नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम अनिश्चित काल तक बढ़ाने की घोषणा की, लेकिन समुद्री मार्गों की नाकेबंदी जारी रहेगी। इजराइल और लेबनन के बीच वाशिंगटन में दूसरे दौर की वार्ता होगी। पराग्वे ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामूहिक निर्वासन अभियान के अंतर्गत अमरीका से निर्वासित गैर नागरिकों को स्वीकार करने की घोषणा की। जॉन टर्नर टिम कुक के बाद एप्पल के नए सीईओ होंगे और जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच तीसरा महिला T20 मैच आज खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम को अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता जारी रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह का संघर्ष विराम आज समाप्त होने वाला था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान कोई साझा प्रस्ताव पेश नहीं करता, तब तक ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप की यह घोषणा एकतरफा मानी जा रही है और अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान और इसराइल इस पर सहमत होंगे या नहीं। ईरान से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन न्यूज एजेंसी तस्नीम ने कहा है कि ईरान ने संघर्ष विराम को बढ़ाने की मांग नहीं की है और नाकेबंदी को बलपूर्वक तोड़ने की चेतावनी दोहराई है। उधर अमरीका ने ईरान से जुड़े 14 ऐसे लोगों, संस्थाओं और विमानों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं जो हथियारों की खरीद और आपूर्ति से जुड़े नेटवर्क में शामिल हैं। इजराइल और लेबनन के बीच अमरीका के वाशिंगटन में राजदूत स्तर की दूसरी वार्ता होने की उम्मीद है। ईरान के खिलाफ अमरीका इजराइल युद्ध के बीच हफ्तों तक चले सीमा पार संघर्ष के बाद इजराइल और लेबनन के बीच 10 दिन का संघर्ष विराम इस महीने की 10 तारीख से लागू हुआ था। लेबनन की दक्षिणी सीमा पर तनाव जारी है, इसलिए ये युद्ध विराम नाजुक बना हुआ है। इजराइल और लेबनन के बीच कोई भी औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। इजराइल लंबे समय से हिजबुल्ला को ईरान का प्रतिनिधि मानता रहा है। इजराइल के साथ वार्ता करने वाला पक्ष लेबनानी सरकार है, न कि हिजबुल्ला। इस बीच हिजबुल्ला ने कहा कि उसने कल शाम कफर गिल्दी बस्ती में एक इजराइल के तोपखाने की चौकी पर रॉकेट और ड्रोन दागे और ये चल रहे संघर्ष विराम के बावजूद तनाव के और बढ़ने का संकेत है। पैराग्वे ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामूहिक निर्वासन अभियान के तहत अमरीका से निर्वासित गैर नागरिकों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट।
पैराग्वे के विदेश मंत्रालय ने कल घोषणा की कि स्पेनिश भाषी 25 निर्वासितों का पहला समूह कल से आना शुरू हो जाएगा। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रवासियों को उन देशों में भेजने की अनुमति देती है जिनसे उनके कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने कथित तौर पर कुछ देशों में मानवाधिकारों से जुड़ी चिंताओं के बावजूद इस तरह की व्यवस्था के लिए कई देशों से संपर्क किया है। कोस्टा रिका, अल साल्वाडोर, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, एस्वातिनी और दक्षिण सूडान सहित कई देशों ने पहले ही निर्वासितों को स्वीकार कर लिया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत सह निर्माण, सह विकास और सह नवाचार के लिए एक अवसर है। उन्होंने भारत और जर्मनी के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया। जर्मनी की अपनी 3 दिन की यात्रा के पहले दिन जर्मन संसद की रक्षा और सुरक्षा समिति को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया आज नई सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रही है और तकनीकी बदलावों ने हालात को और जटिल बना दिया है। उन्होंने बदलते हुए माहौल के अनुसार नई सोच को अपनाने की जरूरत पर बल दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव हो रहा है और जर्मनी के साथ साझेदारी से दोनों देशों को बड़ा लाभ मिल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जर्मनी न केवल रणनीतिक साझेदार हैं बल्कि वैश्विक मुद्दों पर प्रभावशाली आवाज भी हैं। यात्रा के दौरान श्री सिंह जर्मनी के रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान रक्षा औद्योगिक सहयोग रूपरेखा और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के प्रशिक्षण में सहयोग से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने ब्रिटेन में रक्षा उद्योग के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर आर्थिक सहयोग से रक्षा विनिर्माण, तकनीकी आदान प्रदान और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण तकनीकों के सह डिजाइन, सह विकास और सह उत्पादन पर भी बल दिया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने कल लंदन में ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन हिल स्थित मेमोरियल गेट्स पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। जनरल चौहान ने ब्रिटेन की हिंद प्रशांत राज्य मंत्री सीमा मल्होत्रा से भी भेंट की। इसके अलावा उन्होंने प्रमुख अधिकारियों, विचारकों और बुद्धिजीवियों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। भारतीय नौसेना का जहाज INS सुनैना आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचा। यह हिंद महासागर क्क्षेत्र में इसकी परिचालन तैनाती का तीसरा पड़ाव है। IOS सागर पहल के तहत तैनात इस अपतटीय गश्ती पोत पर 16 मित्र देशों के बहुराष्ट्रीय दल सवार हैं। जकार्ता में प्रवास के दौरान जहाज इंडोनेशियाई नौसेना के साथ पेशेवर, सामाजिक और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेगा। इसकी इंडोनेशियाई नौसेना के साथ एक पैसेज एक्सरसाइज निर्धारित है। INS सुनैना के कमान अधिकारी कमांडर सिद्धार्थ चौधरी ने नौसेना क्षेत्रीय कमान 3 के वरिष्ठ नेतृत्व से मुलाकात की। भारतीय नौसेना ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि मिशन ने मार्च में भारत में अपना बंदरगाह चरण पूरा कर लिया है और वर्तमान में समुद्री चरण में मित्र विदेशी देशों में बंदरगाह भ्रमण कर रहा है। INS सुनैना 3 दिवसीय तीव्र गति परिचालन कार्य को पूरा करने के बाद 17 अप्रैल को थाईलैंड में फुकट से रवाना हुआ था। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। 2011 से एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO रहे टिम कुक 1 सितंबर 2026 को अपने 15 साल के नेतृत्व कार्यकाल के बाद अपना पद छोड़ देंगे। वे कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में आसीन होंगे और वर्तमान हार्डवेयर इंजीनियरिंग प्रमुख जॉन टर्नस नए CEO के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। ये परिवर्तन महत्वपूर्ण विकास के दौर का अंत और नेतृत्व को भविष्य के नवाचारों पर केंद्रित करता है। एक रिपोर्ट।
एप्पल ने कंपनी के अनुभवी सदस्य जॉन टर्नस को अपना अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है और उन्हें टिम कुक के बाद कंपनी का नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा है। आईफोन निर्माता कंपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI से प्रेरित उद्योग में बदलाव के लिए तैयार हो रही है। वर्ष 2001 में एप्पल से जुड़े रहे टर्नस ने हाल ही में कंपनी के हार्डवेयर इंजीनियरिंग प्रयासों की देखरेख की है और एप्पल के मैक कंप्यूटर जैसे उत्पादों की बिक्री में फिर से उछाल लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने हाल के वर्षों में बाजार हिस्सेदारी हासिल की है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। जोहानसबर्ग में 5 मैचों की श्रृंखला के तीसरे मुकाबले में आज भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से दोनों टीमें आमने सामने होंगी। दक्षिण अफ्रीकी टीम पहले ही 2 मुकाबले जीत चुकी है। श्रृंखला का चौथा मैच शनिवार को जोहानसबर्ग में और अंतिम मुकाबला 27 अप्रैल को बेनोनी में खेला जाएगा। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम अनिश्चित काल तक बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन समुद्री मार्गों की नाकेबंदी जारी रहेगी। इसराइल और लेबनन के बीच वॉशिंगटन में दूसरे दौर की वार्ता होगी। पैराग्वे ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामूहिक निर्वासन अभियान के तहत अमरीका से निर्वासित गैर नागरिकों को स्वीकार करने की घोषणा की। जॉन टर्नस टिम कुक के बाद एप्पल के नए CEO होंगे और जोहानसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच तीसरा महिला T20 मैच आज खेला जाएगा। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।